मेरे जुझारू नौजवान साथियों नमस्कार। आज 4 मई 2017 है और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं आपसे प्री एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन के बारे में कोई बात करने नहीं जा रहा हूं। उसके दो कारण हैं। पहला कारण तो यही है कि जो आप लोगों के मेल आए हैं उसमें किसी का कोई ऐसा प्रश्न नहीं है, कोई ऐसी समस्या मुझे नहीं मिली जिसको लेकर मैं आज आपसे बात कर सकूं। पिछले 3 दिन से वैसे भी हम लोग काफी बातें करते आ भी रहे हैं। दूसरा कारण यह है कि आज न्यूज में ऐसे काफी बातें हैं जिनको हम आधार बनाकर लंबे समय तक डिस्कशन कर सकते हैं, तो मुझे लगा कि बेहतर है कि हम अपने उस समय को बचाकर उसका इस्तेमाल आज हम न्यूज एनालिसिस के लिए करें। तो आइए मित्रों, हम शुरुआत करते हैं न्यूज एनालिसिस से ही। सबसे बड़ी जो खबर कल के न्यूज में मुझे जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की दृष्टि से मालूम पड़ती है दोस्तों, वह है संपदा को लेकर। यह संपदा क्या है, किस तरीके की है, इसके पृष्ठभूमि क्या है, इस पर मैं आखिरी में बात करूंगा। पहले जो दूसरी छोटी छोटी खबरें हैं वो मैं आपके सामने रख दूं ताकि निश्चिंतता के साथ बिल्कुल द्वंद्व मुक्त होकर के फिर मैं अपनी बात कह सकूं। अदरवाइज जो दिमाग में कहीं ना कहीं वो समय का दबाव काम करता ही रहता है। मित्रों, पहली खबर है स्टील नीति को लेकर के। केंद्र सरकार ने अपनी स्टील नीति घोषित की है 2030 तक के लिए। नो डाउट कि मुझे नहीं लगता है कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की दृष्टि से ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन चूंकि हमारी अर्थव्यवस्था में स्टील का बहुत बड़ा योगदान होता है, आर्थिक विकास में भी, इसलिए थोड़ी बात तो हमें जान लेनी चाहिए। देखिए, स्टील जो है इंफ्रास्ट्रक्चर का एक बहुत बड़ा आधार होता है और जब हमारा देश आजाद हुआ था तो उस समय के औद्योगिक परिदृश्य को, औद्योगिक नीति को आप अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ऐसे उद्योग जिनमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत थी, ऐसे उद्योगों को सरकार ने अपने पास रखा क्योंकि सरकार को लग नहीं रहा था कि इसमें प्राइवेट इंडस्ट्री के लोग आएंगे। स्टील उद्योग उसी में से एक था और आपको मालूम है कि भारत सरकार ने ही राउरकेला में, भिलाई में, दुर्गापुर में, यहां सब पब्लिक सेक्टर स्टील यूनिट्स आई और प्राइवेट में टाटा कंपनी उस समय आई थी। मित्रों, इसमें जो नई नीति में बात कही गई है 2030 तक के लिए है और उसमें जो हमारा स्टील का उत्पादन है वो 3 गुना करने की बात है। अभी जो 10 करोड़ टन का उत्पादन है उसे बढ़ाकर 30 करोड़ टन करने की बात लक्ष्य रखा गया है और ये भी उम्मीद की गई है कि इस दौरान 10 लाख करोड़ रुपए का इसमें निवेश होगा। दूसरी जो बात है कि अभी हमारे यहां जो स्टील की खपत है, एक आंकड़े के रूप में है, बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन अगर आप जानना चाहें तो कभी कभी इंटरेस्टिंग भी होते हैं। अभी हमारे यहां 61 केजी की खपत है पर पर्सन, वो 160 केजी करने का लक्ष्य, मतलब ऑलमोस्ट वही 3 गुना समझ लीजिए, उत्पादन वो है तो 3 गुना हो जाएगा, क्योंकि इस बीच में जनसंख्या बढ़ जाएगी तो 2.5 गुना दिखाई दे रहा है, अदरवाइज जो 3 गुना समझ लीजिए। हालांकि जो विश्व में का जो इसका प्रति व्यक्ति खपत के जो आंकड़े हैं वो 208 किलोग्राम के हैं, तो काफी है, फिर भी हमारे यहां 160 केजी रखा गया है। और मैं आपको बता दूं कि जो किसी देश की अर्थव्यवस्था का जब स्तर मूल्यांकन किया जाता है, जीवन स्तर का मूल्यांकन किया जाता है, तो उसमें एक कंपोनेंट स्टील का भी होता है कि वहां प्रति व्यक्ति स्टील की खपत कितनी है, जैसे ऊर्जा का होता है प्रति व्यक्ति इलेक्ट्रिसिटी की खपत कितनी है, उसी तरह से स्टील की भी बात होती है। दोस्तों, स्टील के बारे में बस इतना ही। अब जो 2-3 बहुत ही छोटी छोटी खबरें हैं वो मैं केवल आपके ध्यान में लाने के लिए बताना चाहूंगा। फ्रेंड्स, एक तो जो मध्य प्रदेश है उसने अपना जो वित्तीय वर्ष है उसे जनवरी से दिसंबर कर दिया है। केंद्र सरकार में लगातार बात चली रही है कि हमारे भारत सरकार के ही वित्तीय वर्ष को जनवरी से दिसंबर तक कर दिया जाए और इसको लेकर मैंने कुछ आपको बहुत खूबसूरत पेपर क्लिपिंग्स भी प्रोवाइड किए हैं जो क्वेश्चन आंसर फॉर्म में तो नहीं थे, लेकिन बिल्कुल इसके पक्ष में क्या कहा गया है, विपक्ष में क्या गया है, वो बहुत ही ब्यूटीफुली प्रेजेंटेड मटेरियल था, वो आपके ध्यान में होगा। हालांकि भारत सरकार ने अभी इस पर कोई फैसला नहीं किया है, लेकिन मध्य प्रदेश ने फैसला कर लिया और इस तरह से मध्य प्रदेश हमारे देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है कि जिसने इस वित्तीय वर्ष को स्वीकार कर लिया है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। दूसरी जो छोटी सी खबर है मित्रों, वो हमारे न्यूज रेडियो न्यूज में भी नहीं थी, मुझे डीडी न्यूज में भी नहीं सुनने को मिली, हो सकता है कि मैं मिस कर गया हूं तो मैं नहीं बता सकता, अखबारों में भी उसे बहुत थोड़ी जगह मिली है, और वो ये है कि ब्रिटेन की जो संसद है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, उसे भंग कर दिया गया है। अब वहां चुनाव होंगे, जून में चुनाव होने की संभावना है, जून में हो ही जाएंगे। मालूम है आपको कि ब्रिटेन में एक जनमत संग्रह कराया गया था इस बात को लेकर कि अब हमें यूरोपियन यूनियन में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। ब्रिटेन के लोगों ने फैसला किया कि नहीं, हमें यूरोपियन यूनियन से निकल जाना चाहिए, जो ब्रेग्जिट के नाम से पॉपुलर है। इसके बाद ही आपको मालूम है कि जो कैमरन जो समय प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने त्यागपत्र दे दिया, क्योंकि वो इस पक्ष में नहीं थे कि हम यूरोपियन यूनियन से निकले, तो इसे उन्होंने अपनी पराजय मानी, और लोग यही लोकतंत्र भी है, तो उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। फिर अभी जो प्राइम मिनिस्टर है मेरी थेरेसा मे, वो प्रधानमंत्री बनी, और अब फिर से चुनाव होंगे। अब चुनाव में देखिए कि क्या फैसला होता है, इसमें ब्रेग्जिट पर भी बहुत इंपॉर्टेंट अंतिम मुहर लगने वाली है। एक बात मैं आपसे और बताना चाहूंगा, कल मैंने टर्की के बारे में आपसे थोड़ी सी बात की थी, दो बातें उसमें मैं और ऐड करना चाहूंगा कि देखिए, टर्की भारत से बहुत दूर नहीं है, उतना नजदीक भी चलिए नहीं है, भारत के फ्रीडम मूवमेंट के समय में उससे अच्छे संबंध रहे हैं, मैंने आपको खिलाफत मूवमेंट के बारे में भी बताया था। दो फैक्ट आपको थोड़े से और मालूम होने चाहिए। आपको ध्यान है कि मैंने कहा था वो एक कोई इस्लामिक परिषद है, उसका सदस्य भी है टर्की, लेकिन पहली बात है कि वो नाटो का भी सदस्य है, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो, जो एक यो कह लीजिए युद्ध संबंधी संधि है, जिसका हेड अमेरिका है। मतलब जो पश्चिमी राष्ट्र हैं, जो एक संगठन के रूप में काम करते हैं एक दूसरे की मदद करने के लिए युद्ध जैसी परिस्थिति में, तो टर्की उसका मेंबर है, ये आपको मालूम होना चाहिए। आगे चल करके जब आपकी थोड़ी सी जो फॉरेन अफेयर्स पर पकड़ हो जाएगी, तो आप देखेंगे कि ये सारे फैक्टर्स बहुत काम आपको आएंगे। दूसरा ये होता है फ्रेंड्स कि जब हम इंटरनेशनल रिलेशन पर तैयारी करते हैं, तो हमें ये मालूम होना चाहिए भारत के संदर्भ में कि ये जो देश है, इस देश का झुकाव किधर है। जैसे देखिए, हमारे जो सबसे ज्यादा विवाद होते हैं वो किससे हो रहे हैं, आप एक तरफ पाकिस्तान आप देख ही रहे हैं अभी, और दूसरा चाइना, ये सबसे ज्यादा भारत के साथ विवाद वाले देश हैं। हमारे पड़ोसी देश भी हैं और इनके साथ हमारे सबसे ज्यादा विवाद भी है, बांग्लादेश भी है, नेपाल भी है, श्रीलंका से भी थोड़े बहुत होते हैं, लेकिन उनके विवाद बहुत छोटे स्तर के हैं, तो आपस में सुलझ भी जाते हैं। इन दोनों के विवाद थोड़े से ज्यादा बड़े होते चले जा रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि जब हम किसी के साथ भी अपने रिलेशन को मैच करेंगे कि टर्की के साथ हमारा संबंध कैसा होगा या हमें क्या करना चाहिए, हम किस लेवल तक विश्वास करें, उम्मीद करें, तो हमें सबसे पहले यह देखना होगा कि अगर चाइना है या पाकिस्तान है, तो इन दोनों के साथ उस देश के क्या संबंध है, ये उनके प्रति क्या रुख रखता है। तो ऐसी स्थिति में आपको बहुत स्पष्ट रूप से मालूम होना चाहिए कि टर्की अभी भी उसका जो झुकाव है, जो दोस्ताना जो झुकाव है, वो पाकिस्तान की तरफ है। उसको आप जोड़ सकते हैं, इस्लामिक उस संगठन का एक सदस्य भी है, तो टर्की के बारे में आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए, राइट, कि पाकिस्तान के साथ अगर हमारा बहुत तनाव बढ़ता है तो टर्की हमारा कितना मददगार हो सकता है। ज्यादा ज्यादा ये हो सकता है कि वो अपने को तटस्थ बना ले, है? लेकिन हम ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो सीधे सीधे हमारे फेवर में आ जाएगा। तो ये तथ्य हमारे दिमाग में बहुत अच्छे तरीके से स्पष्ट हो जाना चाहिए। अंतिम छोटी खबर एक ये है मित्रों कि विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में है, उसे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिया गया है। अब जो भी उसके लिए प्रक्रियाएं होती हैं वो होंगी, ये एक खबर है। और एक बड़ी खबर ये इस मायने में बन जाती है कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन जाने के बाद सीधे इंटरनेशनल वहां से फ्लाइट्स मिलने लगती हैं, उस स्टेट के पर्यटन को बहुत बड़ा आधार मिलता है, आर्थिक विकास के रास्ते खुलते हैं, तो एक बड़ी बात होती है आर्थिक विकास की दृष्टि से भी। तो ये विजयवाड़ा का है, और खासकर जो स्टूडेंट आंध्र प्रदेश के हैं उन्हें तो ये बहुत अच्छे तरीके से जानना ही चाहिए, उनके स्टेट सिविल सर्विस वगैरह में भी ये उपयोगी यह खबर होगी। मित्रों अब मैं आता हूं सबसे आज की बड़ी खबर पर, आज की मतलब मैं चर्चा आज कर रहा हूं, आज के अखबारों में ये बात है, रेडियो पर ये कल के रेडियो न्यूज पर है। अब आप देखेंगे कि डीडी न्यूज में भी संपदा पर उस तरीके से बात नहीं हुई हो, स्टील नीति पर तो बात हुई, डिस्कशन हुआ, बकायदे पूछा गया, लेकिन संपदा वाले पर बात नहीं हुई। तो मैं यहां स्पेशली आपको यह भी बताना चाहूंगा फ्रेंड्स कि जो अगर मान लीजिए कि किसी टॉपिक को दूरदर्शन पर बहुत ज्यादा तरजीह नहीं दी गई है, अखबारों में बहुत ज्यादा नहीं आया है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो बिल्कुल आपके काम का नहीं है। वहां फिर थोड़ा सा हमको अपनी तरफ से सोचना पड़ता है। जैसे संपदा को मैं इतना महत्व क्यों दे रहा हूं, क्योंकि इसका संबंध सीधे सीधे हमारे कृषि से है, किसानों से है, कृषि से भी न कहें किसानों से है। और भारत सरकार ने यह फैसला किया है, संकल्प लिया है कि 2022 तक वो किसानों की आय को दुगुना कर देंगे। अब दुगुना कैसे करेंगे, बट नेचुरल है कि फिर आप चाहे तो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में जो नीतियां ला रहे हो कि उत्पादन बढ़े, या कोई भी ऐसी पॉलिसी जो किसानों की आय को बढ़ा दे, उनके जीवन स्तर को ऊपर उठा दे। तो संपदा का संबंध इसी से ही है, इसका संबंध फूड प्रोसेसिंग एंड मैरीन प्रोडक्शन से है, जिसको सी फूड हम कहते हैं। तो दोस्तों ये फैसला कैबिनेट ने लिया है और आपसे मैं कई बार बात भी कर चुका हूं, तो कैबिनेट की जो इकोनॉमिक अफेयर कमेटी है उसने ये फैसला लिया है और इसको उन्होंने नाम दिया है संपदा। अगर हिंदी का शब्द आप लेंगे तो संपदा का मतलब होती संपत्ति, वेल्थ है ना। आप देख रहे हैं कि इस तरह के योजनाओं को बड़ा अच्छे से जोड़ करके तैयार किया जाए, जैसे उड़ान उड़े देश का आम नागरिक, तो उड़ान उड़ान का उड़ान से भी संबंध हो जाता है और संपदा से भी संबंध हो जाता है। देख संपदा का फुल फॉर्म है, इसको ध्यान से सुन लीजिएगा क्योंकि उसी में इसका चरित्र भी छिपा हुआ है। स्कीम फॉर एग्रो मैरीन प्रोसेसिंग, एग्रो मैरीन प्रोसेसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर। पहला जो एस है वो स्कीम से जुड़ा हुआ है, फिर जो ए है वो एग्रो से जुड़ा हुआ है, एम मरीन से जुड़ा हुआ है, पी प्रोसेसिंग से जुड़ा हुआ है, ए एन से जुड़ा हुआ है, डी डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है, और ए फिर एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर, इन पूरे से जुड़ा हुआ है। इस तरीके से करके बनाया गया है संपदा और पूरा नाम हुआ इसका स्कीम फॉर एग्रो मरीन प्रोसेसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर। इसका मतलब यह हुआ कि एक ऐसी योजना, सामान्य रूप में समझे तो एक ऐसी योजना जो एग्रो यानी कि कृषि, दूसरा मरीन यानी कि समुद्र, जो कृषि से जो चीजें पैदा होती हैं और जो समुद्र से जो चीजें आ रही हैं, जैसे मछली है और भी समुद्र से सी फूड आता है, उनकी प्रोसेसिंग की जाए यानी कि उनका प्रसंस्करण किया जाए उस क्षेत्र में, और डेवलपमेंट ऑफ एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर। तो ये तो ये हिस्सा हो गया इसका कि प्रोसेसिंग उसको डेवलप करना है, और दूसरा ऐसे क्षेत्र बनाने, क्लस्टर का मतलब एक समूह तैयार करना है जहां इस तरह के उद्योग लगाए जा सके, यानी कि इस तरह के उद्योगों के लिए एक अलग से जगह तैयार कर दी जाएगी कि इससे जुड़े उद्योग सब वहीं लग रहे हैं। एक तरह से सेज जैसा कह लें, तो सेज में तो होता यह है कि आप किसी भी तरह के उद्योग को लगा लीजिए, है ना, स्पेशल जो इकोनॉमिक जोन होता है SEZ, तो वहां तो आप कोई भी उद्योग लगा सकते हैं, लेकिन ये जो क्लस्टर बनेगा वो एक ही तरह के उद्योग से बनेगा, एक ही तरह के उद्योग उसमें लगेंगे जो फूड प्रोसेसिंग और मैरीन प्रोसेसिंग से रिलेटेड होंगे। तो ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो गया। तो दोस्तों ये है संपदा। अब आप देखेंगे कि सीधी सी बात है कि जब ऐसा होगा तो इसका फायदा किसको मिलेगा। देखिए किसानों पर हम लोगों ने काफी बातें की हैं, मैंने बहुत ही खूबसूरत आपको आर्टिकल्स भी प्रोवाइड किए हैं। मुझे नहीं मालूम कि उन आर्टिकल्स के साथ आप क्या कर रहे हैं, मतलब उससे पॉइंट्स आपने नोट किए हैं नहीं किए हैं, देखिए अब आप जानेंगे। आप पाएंगे कि अगर हमारे जो किसान हैं वो जो भी पैदा कर रहे हैं, राइट, अगर उनके पैदावार जो हो रही है, जो खाद्यान्न है, अगर उसी को हम ठीक ठाक तरीके से उपयोग में ले आए तो किसानों की आय में कई गुना बढ़ोतरी हो जाएगी। कई गुना न भी कहें तो बहुत परसेंटेज बढ़ोतरी हो जाएगी। जैसे अनाज पैदा हुआ, दुनिया भर का अनाज नष्ट हो गया, ट्रांसपोर्टेशन में नष्ट हो गया, इसलिए नष्ट हो गया क्योंकि हमारे पास कोल्ड स्टोरेज नहीं है। मरीन को भी आप ले लीजिए, समुद्री उत्पाद को भी आप इसी में ले लीजिए। कोल्ड चेन, हमारे पास कोल्ड स्टोरेज नहीं है कि हम उनको रख सकें, हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन का उतना सिस्टम नहीं है कि वो इसको बड़े बाजार में हमारा किसान ले जा करके बेच सके। दूसरा ये है कि जो चीजें जल्दी नष्ट होने वाली हैं उनको एक तो कोल्ड स्टोरेज चाहिए, फिर उनकी प्रोसेसिंग। जैसे आप देखिए टमाटर आलू, टमाटर बहुत जल्दी खराब हो जाता है, किसान पैदा करते हैं, पता लगा 8 आने किलो बेच रहे हैं, 1 रुपया किलो बेच रहे हैं। अब इसी को अगर सॉस बनाने का कारखाना पास में हो तो किसानों का यही टमाटर बड़े आराम से 2 रुपए 3 रुपए किलो बिक सकता है, वैल्यू एडिशन हो गया क्योंकि अब उसे सॉस बन जाएगा। आलू से कितनी सारी चीजें, आप चिप्स वगैरह तो आप खाते ही रहते हैं। तो जो हमारा खाद्यान्न उत्पादन है, किस तरीके से उस उत्पादन को जो रॉ मटेरियल के रूप में है उसे हम प्रोसेस्ड करके, संस्कारित करके या औद्योगिक रूप में कन्वर्ट करके उसे इस रूप में ले आए कि उसकी कीमत बहुत बढ़ जाए, और ऐसे में बट नेचुरल है कि किसानों को उसकी ज्यादा कीमत मिलने लगेगी। तो इस प्रकार से जो इसमें जो चीजें हैं या इसका जो उद्देश्य है वो ये है कि जो हमारे किसान एग्रीकल्चर के काम में ऑलरेडी लगे हुए हैं उनको कैसे सप्लीमेंट किया जाए, उनको उनकी कैसे मदद की जाए और उनकी चीजें अधिक ज्यादा वैल्यू वाली बन जाए। तो बट नेचुरल है कि उसका जो संपदा है उस में जो तरीके अपनाए गए हैं, जो जो योजनाओं में बातें कही गई हैं उनका उद्देश्य यही है। और इसमें यह माना जा रहा है मित्रों कि 20 लाख किसानों को इससे फायदा होगा और लगभग लगभग 5.25 लाख लोगों को इससे रोजगार मिलेगा। ये जो योजना है ये 2016 से 2020 तक के लिए है। 16 इसलिए रखा गया है कि हमारी जो 14th फाइनेंस कमीशन का जो पीरियड है, 14वां वित्त आयोग का भी उसी की सिफारिश से लागू है ना, ये 2020 में इसका कार्यकाल पूरा हो जाएगा। तो 2016 से 2020 तक का पीरियड रखा गया है और इसके लिए 6,000 करोड़ रुपए अभी निर्धारित किए गए हैं, 6,000 करोड़ रुपए। अब आप देखिए कि इसके अंतर्गत क्या क्या किया जाएगा, इसको आप थोड़ा सा समझ लीजिए। आंकड़े मैंने आपको बताए, 6,000 करोड़ रुपए रखा गया है, पीरियड है 2016 से 2020 तक का, 20 लाख किसानों को इसका फायदा मिलेगा और लगभग 5,30,000 रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। मित्रों इसमें मेगा फूड पार्क बनाए जाएंगे, मतलब ऐसे क्षेत्र डेवलप किए जाएंगे जहां उद्योग, फूड से संबंधित उद्योग लगाए जा सके। इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन बनाए जाएंगे, मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए कोल्ड स्टोरेज, ताकि फटाफट यहां से चीजें गई तो वहां रख दी गई, वहां से गई तो वहां रख दी गई और फिर वो अंतिम कंज्यूमर तक वो पहुंच जाए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी हमारे यहां 42 मेगा फूड पार्क का प्रोजेक्ट ऑलरेडी चल रहा है, 42 और 236 इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन पर काम हो रहा है। दोस्तों ये देखा जाएगा कि कैसे हमारे किसान जो फूड उत्पादित कर रहे हैं उनकी सुरक्षा की जा सके और उनकी क्वालिटी को भी बढ़ाया जा सके, इस पर भी काम होगा। फूड प्रोसेसिंग और प्रोसेस करने के बाद जो चीज तैयार होगी उनका संरक्षण कैसे किया जाए और संरक्षण करने की क्षमता कैसे बढ़ाई जाए, इसको भी आप वेयर हाउस कह सकते हैं, है ना, गोदाम कह सकते हैं, उस पर काम होगा। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो प्रोसेसिंग के जो क्लस्टर होंगे उन तक इंफ्रास्ट्रक्चर पहुंचाया जाए, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, इलेक्ट्रिसिटी है, दूसरी जो चीजें जरूरी होंगी उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए। मित्रों ये संपदा के बारे में मैंने आपको थोड़ी सी बातें बताई हैं। देखिए अगर पेपर में और कुछ आगे मिला तो मैं उसके बारे में आपसे चर्चा करूंगा। मित्रों अब मैं आता हूं आपके सीधे सीधे न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग पर, और इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि न्यूज़पेपर की क्लिपिंग में मैं आपको 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट क्लिपिंग्स आज प्रोवाइड कर रहा हूं। एक तो है खेती किसानी में बढ़ सकती है कृषि आमदनी, ये बहुत अच्छा क्लिपिंग है, बहुत अच्छी क्लिपिंग है। और इसमें खासकर मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश ने खेती के क्षेत्र में, मध्य प्रदेश ने तो खासकर कृषि के क्षेत्र में और आंध्र प्रदेश ने खासकर मछली उत्पादन के क्षेत्र में कैसे इतनी तरक्की की है, उनके क्या मॉड्यूल्स रहे, क्या उपाय रहे उन्होंने किए, उसको लेकर के ये आर्टिकल है। इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा और इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट आप नोट भी कर लीजिएगा, क्योंकि जब आप अपना आंसर लिखेंगे तो उदाहरण पेश करने के लिए आपको बहुत ठोस चीजें मिल जाएंगी और इसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट, बहुत ही जबरदस्त इम्पैक्ट एग्जामिनर पर पड़ता है। इसके बाद एक क्लिपिंग फिर से बिजनेस स्टैंडर्ड का ही है फ्रेंड्स, वो काले धन पर अंकुश के तरीके कि सरकार के पास ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जिनके आधार पर वो काले धन पर नियंत्रण स्थापित कर सकती है। और आपको मालूम है कि ब्लैक मनी, ब्लैक मार्केट शुरू से हम लोगों के समय से लेकर के अभी तक इकोनॉमिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है। तो मित्रों, मैं न्यूज़पेपर्स क्लिपिंग्स के बारे में इतना ही आपको गाइड करना चाहूंगा। बाकी और क्लिपिंग्स हैं, आप अपनी अपनी जरूरत के हिसाब से देख लीजिएगा। अब मैं आता हूं सीधे ईमेल पर। ईमेल लिखने वाले अपने सभी दोस्तों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। इसमें से एक ईमेल है नीरज सिंह का, जो फतेहपुर उत्तर प्रदेश से हैं। उन्होंने लिखा है कि लगभग 50 दोस्तों को उन्होंने FEIS के बारे में जानकारी दी है और उसमें से बहुत लोगों ने इस जानकारी के लिए उनकी प्रशंसा की है नीरज की। तो नीरज, इसके लिए मैं एकेडमी की पूरी टीम की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। और यह उम्मीद भी करता हूं कि आप अपना इसी तरह का सहयोग लगातार एकेडमी के साथ बनाए रखेंगे। कुछ अन्य मित्रों के नाम हैं विकास निरंकारी, आदि कपूर, जगदीश चौधरी, स्मृति कौशिक, सुशांत कर्ण समस्तीपुर बिहार से, सत्येंद्र कुमार प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से, अनिल मेंधे गोंदिया महाराष्ट्र से, अली अदनान, अमित कुमार अनुराधा मुजफ्फरनगर से, अजय प्रसाद बक्सर बिहार से, धनंजय त्रिपाठी और तेरेसा अलेक्जेंडर। आप सबका भी बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों, इसी के साथ ही अब मैं आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करने की इजाजत चाहता हूं। नमस्कार।